हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत गया। धृति की ग्रूमिंग क्लासेस शुरू हो चुकी थी। ऑफिस के बाद माधुरी उसे अपने साथ अपने फ्लैट पर ले जाती थी और वहाँ पूरे एक घंटे उस पर काम करती थी। धृति एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली सीधी साधी सी लड़की थी। इन बड़े और अमीर लोगों की दुनिया के आगे वो कहीं नहीं टिकती थी। उसके रहन सहन, पहनावे, बॉडी लैंग्वेज, बात करने के तरीके, सब पर काम करना था। सबसे बड़ी बात थी उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना। माधुरी ने अभी शुरुआत ही की थी और उसके पास भी बस 2 महीने ही थे धृति को वैसा बनाने के लिए जैसा अर्णव चाहता था। शायद कुछ चल रहा था उसके दिमाग में जिसकी तैयारी उसने शुरू करवा दी थी, पर अभी बाकी सब इससे पूरी तरह से अनजान थे। माधुरी और कबीर का रिश्ता अभी बीच मझधार में लटक रहा था। माधुरी उससे नाराज थी। कबीर उसे मनाने की कई दफा कोशिश कर चुका था पर अब तक उसके हाथ कुछ नहीं लगा था, पर कोशिश अब भी जारी थी। सृष्टि की बात करें तो इस दौरान कबीर ने उससे कॉन्टैक्ट नहीं किया था। सृष्टि ने ही एक दो बार उसे कॉल और मैसेज किया, पर कॉल उसने आंसर नहीं की और मैसेज के रिप्लाई में अभी बिजी हूँ, बाद में बात करूँगा का मैसेज भेज दिया। अर्णव और धृति के रिश्ते में भी कुछ खास बदलाव नहीं था। अर्णव अब भी उसकी परवाह करता था। धृति ने अपनी उलझनों को साइड करके पूरा ध्यान अपने काम पर लगाया हुआ था। धृति ने इस दौरान कुछ इंटरनेट से रिसर्च करके, अपने आसपास ऑब्जर्व करके और अर्णव की दी फाइल से काफी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली थी और अपना काम भी शुरू कर दिया था। बीच बीच में जब धृति कहीं फंसती तो अर्णव भी इनडायरेक्टली उसकी मदद कर दिया करता था। जब धृति हिम्मत हारने लगती तो अर्णव उसे मोटिवेट भी करता था। बीते हफ्ते धृति ने दिन रात मेहनत की थी और आज उसकी मेहनत को असेस किया जाने वाला था। आज फैसले की घड़ी थी उसके लिए और इसलिए वो कुछ नर्वस भी थी। सुबह से अर्णव उसे नोटिस कर रहा था। कुछ हड़बड़ाई हुई थी वो। सुबह से जो काम करने जाती थी उसमें कोई ना कोई गड़बड़ कर देती थी, जिससे साफ जाहिर था कि कितनी नर्वस है वो। वो अर्णव के तो सामने ही नहीं आ रही थी। माधुरी से भी बात कर चुकी थी और उसने उसे समझाया भी था, शांत रहने के लिए चिंता न करने को भी कहा था और उसे विश्वास भी दिलाया था कि उसने इतनी मेहनत की है तो रिजल्ट जरूर मिलेगा उसे, सब अच्छा होगा, वो चिंता न करे। पर धृति की घबराहट कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। खैर, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाती और हमारी धृति कब तक अर्णव बाबू का सामना करने से बच पाती? डिजाइंस तो उसे दिखाने ही थे, जिसके लिए सामने जाना ही था और आगे जो होगा उसके लिए भी खुद को तैयार करना था। कब तक बच पाती इन सब चीज़ों से? आखिर में फैसले की घड़ी आ ही गई। अर्णव का एक फ़ोन आया और धृति अपने डिज़ाइंस की फ़ाइल लेकर उसके सामने हाजिर हो गई। इस वक्त दोनों अर्णव के केबिन में मौजूद थे। अर्णव अपनी चेयर पर पूरे स्वाद के साथ बैठा खामोशी से धृति को देख रहा था, जो टेबल के दूसरी तरफ ठीक उसके सामने खड़ी थी। अपने हाथ में थामी फाइल को कस के अपने सीने से लगाए सर झुकाए घबराई हुई सी। लाओ दिखाओ मुझे अपने डिजाइंस। कुछ पल इंतजार के बाद भी जब धृति ने फाइल उसकी ओर नहीं बढ़ाई तो आखिर में अर्णव ने ही फाइल लेने के लिए हाथ बढ़ा दिया। धृति ने पलके उठाकर घबराई निगाहों से उसे देखा, फिर निगाहें झुकाए उस फाइल को देखने लगी। ना तो उसके लब हिले और ना ही उसने फाइल ही अर्णव की ओर बढ़ाई। अंत में अर्णव को ही उठकर उसके पास आना पड़ा। उसने उसके हाथ से फाइल लेते हुए कहा, इतना क्या घबरा रही हो तुम? कोई फांसी की सजा नहीं सुनाने वाला मैं तुम्हें, बस डिजाइंस देखूंगा। अगर पसंद आए तो तुम इस टेस्ट में पास, वरना अगली बार फिर कोशिश करना। इसमें इतना नर्वस होने या घबराने वाली तो कोई बात नहीं। अर्णव ने उसे सहज करने की कोशिश की, फिर उस फाइल के पन्ने पलटकर धृति के बनाए डिजाइनों को देखने लगा। सिंपल, सोबर, स्टाइलिश, क्लासी एंड ब्यूटीफुल डिजाइन बनाए थे उसने। हर डिजाइन में कुछ अलग और खास बात थी और सब के सब फॉर्मल लुक में होकर भी काफी अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लग रहे थे। यकीनन धृति टैलेंटेड थी और आज उसके इस हुनर ने अर्णव को खासा इम्प्रेस किया था। उसका अपने फैसले पर विश्वास और दृढ़ हो गया था कि धृति को ये मौका देकर उसने बहुत अच्छा फैसला लिया है, धृति इस मौके को डिजर्व करती है। अर्णव चेहरे पर गंभीर भाव लिए धृति के बनाए डिजाइन्स को देख रहा था और धृति नर्वसनेस में अपनी हाथों की उंगलियों को तोड़ते मरोड़ते हुए घबराई हुई सी उसे ही तक रही थी। अर्णव ने सभी डिजाइन्स देखे, फिर निगाहें धृति की ओर उठाई। उसकी नजरें धृति की घबराई हुई निगाहों से टकराई। कुछ पल वहां दिल दहला देने वाला सन्नाटा पसरा रहा, जिसने धृति की धड़कनों को बेचैन कर दिया और दिल की घबराहट व बेचैनी भी बढ़ सी गई। अगले ही पल उस सन्नाटे में अर्णव की आवाज गूंज उठी। वेल डन, मुझे तुम्हारे डिजाइन्स काफी यूनिक एंड अट्रैक्टिव लगे। उसकी तारीफ में किए चंद शब्दों ने धृति की सारी बेचैनी और घबराहट का अंत कर दिया। लगा मानो उसकी मेहनत सफल हो गई हो। धृति हैरानी भी थी और खुश भी, और यही मिले जुले भाव उसके चेहरे पर भी झलकने लगे थे। धृति खामोश ही रही, शायद उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सच है। तभी अर्णव के आगे के शब्दों ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। अब से तुम्हारा आधा दिन ऑफिस में बीतेगा, यहाँ तुम मेरी पीए होने की ड्यूटी निभाओगी और बाकी का आधा दिन घर पर रहकर अपने डिजाइन्स पर काम करोगी। एक महीने का वक्त होगा तुम्हारे पास और एक महीने बाद मेरे सामने यही डिजाइन्स रियलिटी में होने चाहिए। तुम्हें जिन भी चीजों की जरूरत होगी सब घर पर मिलेगा तुम्हें। ध्यान रहे, फैब्रिक से लेकर मटेरियल तक सब पर खास ध्यान देना होगा तुम्हें। उन्हीं से इन डिजाइन्स की खूबसूरती उभर कर सामने आएगी और कम्फर्टेबल आउटफिट्स ही ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। अर्णव काफी सीरियस लग रहा था। धृति को अब विश्वास हो चला था कि सच में अर्णव को उसके बनाए डिजाइन्स पसंद आए हैं और एक बार फिर वो उसे गाइड कर रहा था। धृति ने ध्यान से उसकी पूरी बात सुनी और फिर सर हिला दिया। जाओ जाकर अपना काम करो, लंच टाइम पर वापस आ जाना। धृति ने सर हिलाया, फिर फाइल लेकर जैसे ही केबिन से बाहर निकली, माधुरी जो बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी वो तुरंत उसके पास चली आई और बेचैनी से सवाल किया, क्या हुआ धृति, सर को तुम्हारे डिजाइन्स पसंद आए? धृति उसकी आंखों में फिकर साथ देख रही थी। अपने साथ साथ उसने माधुरी को भी परेशान कर दिया था। धृति ने उसका सवाल सुनकर हौले से मुस्कुराते हुए सर हिलाकर उसे जवाब दे दिया। जवाब पाते ही माधुरी की सारी चिंता दूर हो गई और वो इतनी खुश हुई कि खुशी और उत्सुकता के मारे उछलते हुए उसके गले से लग गई। मैं बहुत 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 खुश हूँ यार तुम्हारे लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने कहा था ना कि इतनी चिंता मत करो, तुम्हारी मेहनत रंग जरूर लाएगी। देखा, सर को तुम्हारे डिजाइन्स पसंद आए ना, बेवजह ही तुम इतनी टेंशन ले रही थी और मुझे भी टेंशन दे रही थी। माधुरी बहुत खुश थी और धृति भी। यहाँ धृति अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ा रही थी। वहीं कबीर और अर्णव भी अपने मकसद के एक और कदम करीब जाने को तैयार थे। आज एक हफ्ता हो गया था सृष्टि और कबीर को बात किए हुए। कबीर ने दोबारा सृष्टि से कोई बात या मुलाकात नहीं की थी और अब सृष्टि का सब्र जवाब दे गया था। कबीर अपने केबिन में पहुंचा ही था कि उसका फोन यकायक बच उठा। उसने पॉकेट से फोन निकालकर देखा तो सृष्टि नाम स्क्रीन पर चमक रहा था। सृष्टि का फोन देखते ही कबीर के लबों पर तीखी कुटिल रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। सृष्टि को तड़पा ही तो रहा था वो, डेस्परेट करना चाहता था उसे। वो पूरी तैयारी में था कि अपनी खूब अकड़ दिखाएगा और सृष्टि को अपने आगे पीछे घुमाएगा। खैर, कुछ सोचते हुए कबीर ने फोन पिक कर लिया और सधी हुई आवाज में बोला, हेलो।
हेलो मिस्टर हैंडसम, कहाँ गायब थे यार? न कोई फोन, न मैसेज और न ही मेरे कॉल्स पिक कर रहे थे। मैसेज में हर बार बिजी हूँ, बाद में बात करूँगा कर रटा रटाया जवाब। बात क्या है बॉस? तुम तो उस दिन मुझे मॉडल के तौर पर लॉन्च करने की बात कर रहे थे और उस दिन के बाद तुम्हारी ही कोई अता पता ही नहीं, तुम तो मिस्टर इंडिया ही बन गए। सृष्टि ने जरा नाटकीय अंदाज में उससे सवाल किया और साथ ही अपनी नाराजगी भी जताई। कबीर ने अब भी कुटिल मुस्कान अधरों कर सजाते हुए जवाब दिया, बस पूछो मत यार, काम में इतना बिजी था कि सांस लेने तक की भी फुर्सत नहीं थी। अब जाकर राहत मिली है और आज तुम्हें फोन करने ही वाला था मैं। मैंने अपने फ्रेंड से बात कर ली है, थोड़ा मुश्किल था पर मैंने किसी तरह उसे तुम्हारे लिए कन्विंस कर ही लिया। पर फाइनल डिसीजन फोटोशूट के बाद होगा, जिसके लिए तुम्हें आज दोपहर में हमारे स्टूडियो पहुंचना होगा। वहां मेरी असिस्टेंट मिलेगी तुम्हें और अगर मौका मिला तो मैं भी आ जाऊंगा। और ध्यान रखना, फोटोशूट में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए वरना अपने फ्रेंड के सामने मुझे एम्बैरेस होना पड़ेगा। तो फाइनली आज तुम्हारे पास मुझसे मिलने के लिए वक्त होगा। ठीक है, फिर तुम मुझे एड्रेस सेंड कर देना, मिलते हैं आज लंच में। कबीर ने हामी भरी, फिर फोन काटकर अपने रिवॉल्विंग चेयर पर आकर बैठ गया। सृष्टि अभी से ही नहीं, पहली मुलाकात से ही उसमें इंटरेस्ट दिखा रही थी, पर ये उसके नेचर का अहम हिस्सा था, या ये कहें कि उसकी आदतों में शुमार था। जहाँ हैंडसम और अमीर लड़के देखे वहीं फ्लर्टिंग शुरू, और जब उनके पैसे और जिस्म से मन भर जाए या दूसरा बेहतर ऑप्शन मिल जाए तो फिर पहले वाले को छोड़कर दूसरे वाले को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाने की तैयारी शुरू कर देती। लोगों के दिलों और इमोशंस के साथ खेलना उसका शौक भी था और जरूरत भी। आखिर इतनी लग्जीरियस लाइफस्टाइल अफोर्ड करने के लिए पैसों की जरूरत तो थी ही,
और यही वजह थी कि उसे प्यार के जाल में फंसाना कबीर के लिए काफी टफ टास्क था और उतना ही चैलेंजिंग भी। खैर, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था वो। सब अपने अपने कामों में लगे थे और कहीं ना कहीं सबको भविष्य की चिंता सता रही थी। लंच टाइम हुआ तो माधुरी को कबीर ने लंच के लिए बुलाया। माधुरी नाराज थी उससे, इसलिए उनकी ज्यादा कुछ बात नहीं हुई। कबीर ने कोशिश तो की, पर माधुरी चुप्पी साधे बैठी रही। बस सृष्टि के बारे में ही उनकी बात हुई। लंच के बाद माधुरी स्टूडियो के लिए निकल गई। काफी एक्साइटेड थी वो धृति की जुड़वा बहन से मिलने के लिए, या ये कहें कि उसकी बैंड बजाने के लिए। साथ ही साथ कबीर को भी धमकी दे गई थी कि शाम से पहले वहाँ कदम न रखे, वरना जान से जाएगा। दूसरे तरफ अर्णव ने भी धृति को लंच के लिए केबिन में बुलाया था। अब तो धृति को भी आदत सी हो गई थी, लंच उसका अर्णव के साथ यहाँ उसके केबिन में ही होता था। हालांकि अब भी दोनों को ज्यादा बात नहीं होती थी, पर अर्णव का सॉफ्ट रवैया कहीं ना कहीं उसके मन पर लगे जख्मों को भरने लगा था और वो उसके साथ सहज होने लगी थी। लंच के बाद धृति वापस अपने केबिन में चली गई थी और अर्णव स्टूडियो की लाइव रिकॉर्डिंग देखने बैठ गया था। धृति की सादगी से उलट सृष्टि जब स्टूडियो पहुंची तो उसने महंगी डिजाइनर ड्रेस पहनी हुई थी। मेकअप भरे चेहरे पर गुरूर साफ झलक रहा था। यकीनन खूबसूरत थी वो और फिगर भी कमाल का मेंटेन किया हुआ था। किसी मॉडल या हीरोइन से किसी सूरत में कम नहीं थी वो, और शायद इसी बात का घमंड था उसे, इसलिए अपने सामने किसी को कुछ समझती नहीं थी। इस वक्त धृति और उसमें सिर्फ एक ही अंतर नजर आ रहा था और वो था धृति के अपर लिप का तिल, वरना दोनों हूबहू एक सी दिख रही थीं। अगर धृति को भी इसी तरह से तैयार कर दिया जाए तो दोनों में अंतर करना लगभग नामुमकिन ही था, और शायद इसी बात का फायदा उठाकर उन्होंने अपनी पहचान बदली है और कोई उन्हें पहचान भी न सका। टू बी कंटिन्यूड। कैसी होगी माधुरी और सृष्टि की पहली मुलाकात?